ओम शांति। परमात्मा की पालना लेकर आत्मा कितनी निहाल हो जाती है, ये हम सभी का अनुभव है। किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत है, किसी का मतलब है, लेकिन अनुभव उस पिता की पालना का हम सबके पास है। हम कितने सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म किससे हुआ, पालना किससे हुई और हमारी पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है। कितने हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसा आज दिन तक हमने किसी से सुना कि हमारा बाप कौन है, टीचर कौन है और हमारा सतगुरु कौन है, लेकिन हम प्रैक्टिकल उनके साथ वो अनुभव कर रहे हैं, तो हमारा कितना सौभाग्य है। तो आज मुझे अनुभव सुनाने का मेरा अनुभव, मैं 15 साल की थी तो मैं भक्ति में पूर्ण रूपेण मस्त और व्यस्त थी। इस उम्र 15 साल की उम्र में मैं माला भी फेरती थी कई बार दिन में और भक्ति भी पूरी, कोई भी सत्संग कोई भी कीर्तन नहीं छोड़ती थी और रात को 1:30 बजे उठ करके भी मैं माला फेरती थी कि बस एक बार भगवान आप मुझे दर्शन दे दो। और जब भी मैं ज्यादातर भक्ति श्री कृष्ण की करती थी और रेडियो में जब भी श्री कृष्ण के कोई ऐसे गीत आते थे, भजन आते थे, तो मैं बहुत रोती थी कि भगवान एक बार मेरे को आप अपने दर्शन दे दो। बहुत जैसे प्यास थी, लेकिन चलते चलते जब मैं ज्ञान में आई तो ज्ञान में आते ही पहले आने से पहले ही मुझे, जब मैं भक्ति में थी तो एक साक्षात्कार हुआ था जिसमें मुझे ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए और ब्रह्मा बाबा ने सिर पर ऐसे हाथ फेर करके कहा, बच्ची बीज पड़ गया है, फल बहुत अच्छा निकलेगा, और बाबा गायब हो गए। मैंने कहा बीज पड़ गया, फल अच्छा निकलेगा, क्या निकलेगा। तो उन्हीं दिनों में मेरी माता जी और मेरी चाची जी करोलबाग सेंटर में जाती थी। करोलबाग सेंटर दिल्ली का दूसरा सेंटर था, बस एक ही सेंटर था कमला नगर और दूसरा सेंटर ब्रिजमोहन के पिताजी ने, आनंद जी ने खोला था। तो वहां पर हमारा जब जाना शुरू हुआ तो दादी प्रकाश मणि हमारे करोलबाग सेंटर की इंचार्ज थी। तो मैंने जब कोर्स शुरू किया और मेरे साथ चाचा जी की लड़की शील थी जो आजकल नोएडा में इंचार्ज है, वो भी चली। लेकिन उसने शास्त्र, वेद शास्त्र बहुत सुने हुए थे और कुछ पढ़े हुए भी थे, तो वो हर लेसन के अंदर बहुत बहुत बहस करती थी और मैं बिल्कुल शांति से जो सुनाती थी पालू दादी वो सुनती थी और दूसरे दिन जाके घर में उसी चीज की प्रैक्टिस करती थी, धारणा करती थी। लेकिन वो शील बहन बहुत ज्यादा वो बहस करती थी, तो हमारा 7 दिन का कोर्स 15 दिन में पूरा हुआ, इतनी वो हर पॉइंट में बहस करती थी। तो जब हमारा कोर्स पूरा हुआ तो उसके बाद हमने क्लास में हम सवेरे जाना शुरू कर दिया। तो क्लास में जब हमने जाना शुरू किया तो दादी प्रकाश मणि जी जब क्लास कराती थी तो जैसे एक एक जो मुरली की जो पॉइंट होती थी उसको जैसे हम बिल्कुल लिखते भी थे और अपने मन के अंदर भी पक्की करते थे। और मेरा ये उस समय का अनुभव है कि वो जो मुरली सुन के जाती थी फिर सारा दिन उसकी हम प्रैक्टिस जरूर करते थे। मतलब आज और उस समय का हम देखें तो बड़ा अंतर है। उस समय यानी जो सुन के सेंटर से जाते थे वो सारा दिन प्रैक्टिस करते थे, और मेरे लौकिक जो पिताजी थे वो कराची में थे उन दिनों, एयरफोर्स में सीजीओ थे, सिविल गजिस्टर ऑफिसर। तो वो उन्होंने कराची में संस्था की बहुत एंटी बातें सुनी, बहुत सुनी हुई थी। तो जैसे ही छुट्टी पर आए तो उन्होंने जब सुना कि ये वहां जाती है, माता जी का तो उन्होंने बंद करवा ही दिया हुआ था, लेकिन मेरा जब सुना तो बिल्कुल मेरा बंद कर दिया कि बिल्कुल नहीं जाना है। यहाँ इस समय तक मैंने बाजार का खाना छोड़ दिया था, अपने हाथ से खाना बनाती थी और भोग लगाती थी, और जब खाना खा के मैं फिर ट्रेनिंग में चली जाती थी, एक ट्रेनिंग शुरू की थी कि अपने पैरों पर खड़े होंगे तो यहाँ घर से निर्बंधन हो सकेंगे, तो चली जाती थी खाना बना के चली जाती थी। तो पीछे से वो क्या करते थे, पिताजी ने कह दिया हुआ था, और जब वो थे भी मेरे खाने में सब्जी में हल पर बारीक बारीक प्याज काट के और सब्जी में मिक्स करवा देते थे। और मैं जब शाम को आती थी नहा धो करके, जब मैं खाना खाने बैठती थी भोग लगा के, और जैसे खाना खा ऐसे ही ग्रास लेके आती थी तो प्याज की महक आती थी। तो उन दिनों था कि जो भी हम सुनते हैं हमको अपने जीवन में उतारना है, तो जरा भी चेहरे को नहीं बदलना होता था, बिल्कुल बड़ा हर्षित मुख होके उस कटोरी को सब्जी को बड़े प्यार से अलग करके और रुखी रोटी खा लेती थी। तो जब पिताजी आए हुए होते थे तो वो छुप करके देखते थे कि देखो ये खाना खाती है अब, तो मैं बड़े खुशी से जैसे बाबा की याद में वो खाती थी, तो वो भी देखते रहते थे। ऐसे कई दिन उन्होंने देखा भी होगा और फिर कह भी गए कि ये जब खाना खाए इसकी सब्जी को बिल्कुल प्याज डाल दो, एक दिन नहीं अपने आप खाएगी, जब रोज डाल दोगे आप तो एक दिन तो खाएगी, कब तक ऐसे नहीं खाए। मैंने कहा ठीक है, हमारे साथ बाबा है, वो रोटी में इतना टेस्ट भर देते थे जो मैं कहती बात ही नहीं पूछो। तो उसके बाद फिर क्या होता था कि यानी खाना मैंने सारा टोटली बाजार का खाना टोटली फैशन करना, ड्रेस भी अपनी बदल दी हुई थी, सब कुछ कर दिया हुआ था। उसके बाद फिर क्या होता था कि यानी मेरा ये देख करके यानी पिताजी को कुछ अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन बोल नहीं सकते थे क्योंकि क्या खराब डाला है, मैंने तो सिंपल ही ड्रेस पहनी। और यहाँ तक यानी मेरी उस समय की धारणाएं हो गई हुई थी कि हमारे उस समय दो मेरी बड़ी बहन की और बड़े भाई की शादी हुई, शादी में भी मैंने अपने हाथ से खाना बनाया बिना प्याज के, और वो ही व्हाइट ड्रेस पहनी। तो सब लोग देखते थे कि ये वैसे भी सभी से जो बोलती है कितना प्यार से बोलती है। तो हमारे बस दादी ने ये पक्का भर दिया था कि जो भी हम ज्ञान में सुनते हैं, जो बाबा के कायदे हैं, उसको अपने जीवन में उतारते जाना है। और मेरा मतलब यही लक्ष्य बन गया था। दादी की को तो रोज मिलते, दादी रोज हमें क्लास के बाद जरूर 10-15 मिनट देती थी और अच्छी तरह से प्यार से हमारे अंदर ज्ञान के बांध भर देती थी, तो हम तो शक्तिशाली बनते जाते थे। और फिर जब हम मधुबन में गए, मधुबन में जाकर के हमने क्या देखा कि मुरली जब सवेरे सुनने के लिए जाते थे कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में मुरली आके सुनाता है, तो सचमुच मेरा ये अनुभव था कि जब भी हम बाबा की मुरली सुनने सवेरे जाते थे तो हमको आगे पहली पहली लाइन में बिठाते थे। चार कन्या थी, मैं चक्करदारी, एक और सुकर्मा थी और एक यशील थी, तो हमको वो आगे बिठाते थे। तो जब हम बाबा की मुरली सुन रहे होते तो सचमुच प्रैक्टिकली अनुभव है कि बस बाबा की मुरली सुनते बाबा की दृष्टि में दृष्टि रहती थी और बिल्कुल ये जैसे ये शरीर जैसे बिल्कुल भूला हुआ होता था, बस जैसे हम बाबा से वो मुरली सुन रहे हैं। और वो बाबा शिव बाबा की यानी जो दृष्टि थी उसमें एक शक्ति और स्नेह इतना भरा हुआ होता था कि बुद्धि कहीं भी नहीं जाती थी। तो प्रैक्टिकल अनुभव होता था कि वास्तव में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर के अपनी मुरली सुना रहे हैं। सारा दिन में फिर उस मुरली का भी बहुत अच्छा इफेक्ट भी रहता था। मतलब सारा दिन वहां उन दिनों ऐसे लगता था कि जो आज तो कहते हैं सारा दिन अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो, आज देखते हैं प्रैक्टिकल क्या है, लेकिन उस समय हम देखते थे कि सचमुच यानी सारा दिन आत्मा की स्थिति भी ज्यादातर रहती थी और बाबा को याद करते थे। तो जब ऐसी स्थिति रहती थी तो हमें बहुत बहुत जैसे शक्ति भी मिलती थी। तो जब वो पिताजी आते थे तो बहुत कुछ यानी हमारे ऊपर बंधन भी डालते थे, लेकिन मुझे जरा भी बंधन नहीं। और प्रैक्टिकल मेरा यही अनुभव था घर में रहते हुए, जैसे कि बिल्कुल इन घर वालों के साथ जरा भी अटैचमेंट नहीं होती थी, मतलब उनके साथ बिल्कुल जैसे न्यारी और प्यारी। तो फिर क्या होता था कि थोड़ी सी मेरी आजकल तबीयत ये भूल जाती है, बात जो कहनी होती है वो थोड़ा ख्याल नहीं करना। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ये घर के बाबा के पास जब मैं आई थी तो बाबा को हम देखते थे कि कितना बाबा नष्ट हुआ है। मुझे याद है मैं भी बैठी हुई थी तो निर्मल शांता दादी आई, तो निर्मल शांता दादी थोड़ा सा उसमें थी कहा कि बाबा एक भाई ने आपके बारे में इतना खराब खराब अखबार में डाला है, मैं तो इसके ऊपर केस करूंगी, ऐसे बाबा के। तो बाबा एकदम जितनी देर वो बोलती रही बाबा इतने प्यार से उसको दृष्टि देते रहे और हम लोग देख रहे थे, देते रहे कहा नहीं बच्ची बिल्कुल उसके ऊपर केस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल उसको मना कर दिया। तो बाबा कहते हैं, वो कहते मैं नहीं ऐसा नहीं कर सकती कि आपके लिए, वो थोड़ा उससे बोल रही थी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची ऐसा नहीं करना है। लेकिन हमें ये एक बहुत अच्छा अनुभव होता था कि इतने दिन दो दो मास तीन तीन मास भी हम रह के आते थे, हमको ये पता ही नहीं चलता था कि इनकी आपस में क्या रिश्तेदारी है। बाबा की युगल यशोदा माता थी, मैंने तीन महीने भी हम रहे लेकिन हमको पता नहीं चला कि बाबा की युगल कौन है, बाबा की बहू कौन है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता था किसी का भी। आपस में ये पांच बहनें हैं आपस में, ये यानी बिल्कुल देह के संबंध से जैसे कि एकदम न्यारी थी। तो हमें बड़ी अच्छी प्रेरणा मिलती थी कि देखो इतने सालों से और ये आपस में रह रही हैं, बहनें हैं और फिर भी आपस में इनका जरा भी पता ही नहीं चलता है। हमें फिर बाद में किसी ने परिचय दिया ये इसकी बहनें हैं, ये इसकी है, ये सब बाद में पता चला। तो बाबा ने कितना जो पहला पाठ बाबा कहता है कि अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, तो प्रैक्टिकल इन दादियों ने किया हुआ था, उनको देख करके हमने भी सीखा। भले घर में मैं रहती थी लेकिन घर में रहते हुए मेरे को जरा भी बदलाए उनके साथ वो रहे वो नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर क्या हुआ कि चलते चलते मैं मातृश्री, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल नहीं जाने देते थे सेंटर पर, बिल्कुल बंद कर दिया मेरा। लेकिन मैं जब ट्रेनिंग में जाती थी तो आती बार क्लास मधुबन अपने सेंटर पर जरूर करके आती थी, क्लास मैंने कभी भी मिस नहीं की, आती थी, वो पिताजी को नहीं पता चलता था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे 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 क्या हुआ, पिताजी यानी मेरे ऊपर इतने स्ट्रिक होते जाते थे, इतने स्ट्रिक, लेकिन मैं बिल्कुल उनको जब देखती भी थी बड़े प्यार से बड़े हर्षित मुख होकर के देखती थी, जरा भी अपने चेहरे में वो गुस्सा लाऊं बिल्कुल भी नहीं। तो वो ये भी देखते थे कि मैं इतना इसको बोलता हूं और ये कुछ भी इसके ऊपर वो नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल हम देखते थे कि दीदी और दादी ने हम लोगों को इतना वो मेरे को कर दिया हुआ था कि बिल्कुल जैसे दादी और दीदी कहते थे, जैसे बाबा मुरली में कहता था, जैसे उन दिनों, आज के बाद तो अपन बहुत फर्क देखते हैं, उन दिनों बिल्कुल प्रैक्टिकल वो स्वरूप बन करके जैसे घर में चलते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बाबा के पास भी हम मिले, ब्रह्मा बाबा को भी देखा हमने बहुत बहुत जाकर के वहां, तो यानी योग बाबा कहते अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, आज तो पढ़ लेते हैं और सुना देते हैं, लेकिन उन दोनों प्रैक्टिकल में ऐसा एक वातावरण रहता था, ऐसे बाबा की रहती थी दृष्टि बच्चों के ऊपर कि मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इतना वहां पर मतलब एक वातावरण वो था, पावरफुल था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यानी मैं मधुबन में ना मैं घर में ही रहती थी, तो मैंने कहा कि मेरे को कुछ ट्रेनिंग के लिए वो जयपुर में पॉइंट वो एम्ब्रॉयडरी के वो सैंपल लेने जाना, देखने जाना। मैं घर में ही रहती थी और जाना मुझे सेंटर पर था। दादी ने कहा जयपुर में नया सेंटर खुला है, शांता तुम जाएंगी? मैंने कहा हाँ जाऊंगी, तो कहा छुट्टी मिल जाए? मैंने कहा मैं चली जाऊंगी। तो मैं उनको दो तीन दिन के लिए कह के गई, तो पिताजी ने कहा ठीक है वो ले जाओ, लेके आओ सैंपल लेके। तो मैं 15 दिन वहां रह गई। फिर पिताजी का बड़ा गम्मा गरम पत्र आया कि चुपचाप ये पत्र बैठते ही आ जाओ, तो मैं तुमको लेने आऊंगा, फिर नहीं कहना। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं एक आधे दिन में आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ। अभी मैं एक आधे दिन में जाने वाली थी कि पिताजी का हार्ट फेल हो गया। तो फिर मैं गई और जाके सारा कुछ बिल्कुल, लेकिन मेरी स्टेज ऐसी थी एकदम बिल्कुल निर्मोही की स्टेज। सारा काम भी किया जो भी उनका था करने का, वो भी किया सारा। और मैं आ गई पिताजी के शरीर छोड़ने के बाद, मैं 2-3 दिन के बाद फिर आ गई। फिर तो मैं जयपुर में परमानेंट ही रहने लग गई। जब मैं जयपुर में परमानेंट रहने लग गई तो बाबा ने कहा बच्ची देखो जयपुर में म्यूजियम बना जाए और मैं तुमको लिखता गाइड करता रहूंगा और तुम वैसे का वैसे म्यूजियम बनाना। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने महेंद्र भाई को भी बुला लिया, कोई ऐसे से बाबा की प्रेरणा है। तो जयपुर का पहला म्यूजियम सारे विश्व में, वो पहला म्यूजियम बना था जो जयपुर में बना था। उसको देखने भी बहुत लोग आते थे। तो जयपुर में रह करके यानी इतनी अच्छी वहां पर सेवाएं हुई, बहुत अच्छी सेवाएं हुई। उसके बाद यानी ये जयपुर के बाद फिर क्या हुआ कि मैं मधुबन में फिर गई, जयपुर से मधुबन में फिर गई। तो बाबा ने मैं उन दिनों कोर्स करा करके और मैं बाबा के कमरे में चली गई, वहां पिकनिक चल रही थी। तो ईशु दादी ने कहा कि शांता तेरी लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ दिया, आज आलोनर का फोन आया था। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा चलो यही बंधन मुझे बार बार डालती थी, बार बार दिल्ली मेरे को बुलाती थी, चलो ये बंधन भी पूरा हुआ। और फिर उसने थोड़ी देर के बाद मेरे को टोली की प्लेट भी दी कि देखो अभी ये खाती है। तो मैंने वो प्लेट में दृष्टि दे के और खा के और प्लेट रख दी। तो इतने में बाबा पिकनिक पूरी हुई और बाबा बाहर निकले, हम सभी भी बाहर निकले। तो बाबा थोड़ी दूर चल के कहता वो शांता बच्ची कहाँ है? मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के और चलने लगे और रुक करके कहते शांता तेरी लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ दिया है। मैंने कहा हाँ बाबा, मुझे यीशु दादी ने बताया। मैंने कहा बाबा यही एक मेरा बंधन था जो मुझे बार बार दिल्ली में इनके कारण जाना पड़ता था, इसका बहू से झगड़ा होता था और फिर ये मेरे को बुलाती थी मुझे जाना, चलो बंधन पूरा हो। बाबा ने कहा ऐसे कहती हो माँ के लिए, ऐसे कहती हो? तो मैं एकदम बाबा की तरफ से देखने दृष्टि दे रही थी कि बाबा किस दृष्टि से बोल रहे। तो मैंने कहा नहीं अभी तुमको जाना 10 बजे के टाइम। मैंने कहा बाबा अभी तो मुझे रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगी, तो मेरी कल वैसे भी मैं सवेरे जा रही हूँ, तो मैं सवेरे चली जाऊंगी। तो बाबा ने कहा अच्छा तुम फिर टेलीग्राम कर दो कि मैं कल आ रही हूँ। तो मैंने कर दी। दूसरे दिन जब मैं गई और तीसरे दिन सवेरे 8 बजे पहुंची तो स्टेशन पर कोई भी नहीं आया, तो मैं सीधी सेंटर पर गई। सेंटर पर जब मैं गई तो पालू दादी ऊपर सीढ़ी पे खड़ी के मुट्ठी अभी आई है, कल शाम को तेरी माता जी ने शरीर छोड़ा। मैं कहा कल शाम को छोड़ा? मैंने कहा अच्छा ऊपर तो आने दो। तो फिर मैं ऊपर गई तो मैंने घर में फोन किया, उन्होंने कहा कि 11 बजे उनका होगा तो आप आ जाना। तो फिर उसके बाद मैं नहा धो करके और पालू दादी को कहा भाई अभी मुझे मैं जा रही हूँ लोकी घर जा रही हूँ और उनका आज ये होना है 11 बजे और मुझे थोड़ा कुछ खाने के लिए दे दो, शाम को मैं 4-5 बजे वापस आऊंगी। तो कहा ठीक है, तब ठीक है आज भोग बना हुआ दे दो, मैं कहाँ दे दूँ। तो उसने भोग दे दिया और भोग मैंने खा करके और चली गई लोकी घर में और जाके सारा उनका चित्रा नहला सारा काम उनका किया। तो घर वालों ने बड़ा आश्चर्य खाया कि ये बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल वो बच्ची वो करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगा कि भाई उपराम उपराम होकर के नहीं चल रही है, अपना घर हमारे साथ मिलकर चल रही है, बड़ा अच्छा लगा उनको। तो मैं सेंटर से ही गई थी तो मैं फिर वापस मनी का मैं नहा धो करके फिर आऊंगी। तो मैं सेंटर पर आई वापस तो बाबा जब मैं वहां मधुबन से आई तो बाबा मुझे पेड़ तक बाबा दीदी और दादी छोड़ने तक आए और लास्ट तक मेरे को प्यार से यानी इतना हाथ फिरते रहे और कहा बच्ची जाती समाचार देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई बाबा ने कहा जाती समाचार देना तो भी मैं नहा धो करके और मैं चिट्ठी लिखी बाबा को अंतर्देशीय पत्र कि बाबा यानी ऐसे ऐसे मैं आ गई थी और सारा समाचार। मैंने कहा बाबा आप जो कहते ना अम्मा मरे तो हलवा खाऊं तो बाबा मरे तो हलवा खाऊं, आज प्रैक्टिकल मैंने अम्मा मरने पर हलवा खाया। तो बाबा ने जैसे ही ये चिट्ठी पढ़ी उस समय यीशु दादी सुना रही थी तो उसी समय कहा देखो बच्ची कितनी समझदार कितनी होशियार है कितनी मजबूत है देखो एक आंसू भी। तो बाबा के साथ बहुत अच्छा प्रैक्टिकल जो बाबा मुरली में सुनाते थे वो प्रैक्टिकल जीवन में उतारना बड़ा बड़ा सहज लगता था। और लौकिक घर से तो ऐसा हमारा हो गया कि जैसे बंधन कटा ही पड़ा था, बाबा जैसे कि निमित्त बने, बाबा का ज्ञान निमित्त बना, परिवार हमारा निमित्त बना और दादी दीदी ने तो इतनी अच्छी हमें पालना दी कि उस पालना से सचमुच जो कड़े से कड़े बंधन भी थे वो भी हल्के हो गए। और शुरू से हमने तो देखा, आज अपन देखते हैं कई भाई बहन घर गृहस्थी में रहते हैं और कैसे चलते हैं और कन्याएं भी कई आती हैं और कैसे चलती हैं, लेकिन हमारा तो ज्ञान योग कोर्स करने के बाद बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि प्रैक्टिकल जीवन हमारी यही है। जरा भी मतलब आज मैं समझती हूँ मेरे पास ये अपना वो है कि कभी भी चाहे कितनी भी परीक्षाएं सामने आई लेकिन हमें संशय नहीं उठा, बस यही था कि हमारे जो इतने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब संस्कार हैं वो भी युक्त हो रहे हैं और नए श्रेष्ठ जीवन के लिए भी हम अपने संस्कारों को बना रहे हैं। कभी भी हमको ये महसूस नहीं हुआ, मतलब ज्ञान जो सुना जैसे कि प्रैक्टिकल जीवन में वो अंदर आ गया, धारणाओं में आ गया, ये होता नहीं ऐसे कैसे होगा ये कैसे, ना सवाल ही नहीं। और मुझे और भी बात आती थी कि दीदी और दादी ने मतलब कैसे यानी आप देखिए मैं आती थी और बड़ी दूर से आती थी और कई बार दीदी मेरे पर्स में डाल देती थी कि इतना किराया खर्च होता है तो इस बेचारी का होता है। तो मैंने देखा जो भी लौकिक घर से धन संपत्ति जो भी कुछ भी मिलता था एक नया पैसा भी हम अपने पास नहीं रखते थे, एक नया पैसा जैसे बिल्कुल लगता था कि जैसे हम अपनी समर्पित जीवन में जी रहे हैं, जैसे दादियां चल रही हैं वैसे, जैसे कभी भी ये कुछ भी इतना बहुत कुछ मिलता था, कई हर तरह से कॉस्टली चीज भी मिलती थी, मैं कभी नहीं ये समझती थी ये मेरा जाके दादी के हाथ में दीदी के हाथ में देती। और बिल्कुल ऐसे लाइफ लगती थी कि जैसे कि हम बाबा के गोद में बाबा की पालना में पल रहे हैं। ये है अपने निश्चय की बात, जितना हम अपना निश्चय रखते हैं जो भी हम सुनते हैं और उस पर चलते हैं प्रैक्टिकल में, तो बाबा की शक्ति भी हमें मिलती है। ये मैंने जीवन में जरूर अनुभव किया कि जरा भी मुश्किलात लगती नहीं थी बिल्कुल ही। मैंने कहा देखो हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं कि जो भगवान की पालना मिल रही है, भगवान से हमें जन्म मिला है, हम कोई साधारण नहीं है। लेकिन अंदर अहंकार भी फिर नहीं, जो बाबा की धारणाएं हम बच्चों को बताते हैं, नशा रहे जरूर हमें शुद्ध कि हम किसके बच्चे हैं, लेकिन उसमें हमें ये चेक जरूर करना है कि हमें मान शान की ना तो भूख हो ना अहंकार अभिमान हो। अगर इन बातों का, तीन चार बातों का अगर हमने बिल्कुल अपना संस्कार बना लेंगे, तो ये ज्ञान मार्ग इतना सरल और इतना शक्तिशाली लगेगा जो बात नहीं पूछो। पैर जैसे जमीन पर टिकेंगे नहीं, कितने भी परीक्षाएं सामने आ जाएं, कितने भी भाव स्वभाव सामने आ जाएं, जरा भी उसकी परवाह नहीं रहेगी अगर हमें हमारा संबंध बाबा के साथ सही है। जरा भी कोई भी देहधारी स्नेह पूरा देना है, पूरा रखना है, लेकिन हमारा बुद्धि का योग उनमें अटके और लटके नहीं, ये अपनी चेकिंग जरूर करनी है। तभी हमारा जो पुराना जो हिसाब किताब है वो चुकतू होगा, नहीं तो पुराना हिसाब किताब हमें खींचता रहेगा। अभी हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि बस संकल्प भी नहीं करना पड़े, नेचुरल हमारी लाइफ ऐसी चलनी चाहिए। ये अभी हमारा अपना संस्कार हमको पक्का करना है। ऐसे नहीं कि मैं पक्की कोई कर चुकी हूं, अभी कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें विघ्न डालते हैं अहंकार अभिमान मान अपमान, इनसे हमको जरूर दुश्मनों से बच करके रहना है। और इनसे अगर बच के रहेंगे तो हम बहुत बहुत सेफ और हल्के फुल्के होके चलते चलेंगे। और कोई आपको प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा तो छोटा सा ही अनुभव है, बस बाप के साथ हमारा संबंध और संपर्क है तो हम कहीं भी हिल डुल नहीं सकते हैं। बाप के साथ हमें खजाने मिलते ही रहेंगे, ये मेरा छोटा सा अनुभव है। हाँ मम्मा का, हाँ ये तो मैंने मूल निर्बंधन हुई मैं मम्मा की स्थिति, जब मेरे घर लौकिक बहुत अच्छा आपने किया, जब मेरे लौकिक घर में बहुत ज्यादा पिताजी एंटी का वो पार्ट बजाते थे, तो फिर इसके बीच में क्या हुआ कि जब पिताजी ने देखते रहते थे ये कैसे चल रही है, तो एक दिन पिताजी, मैं ऐसे बैठी हुई थी और पिताजी आकर के मेरे टेबल के नीचे ढूंढ रहे थे। मैंने कहा क्या ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने सब घर वालों को बुला लिया, तो मेरे को कहा कि मैं तेरे पैर ढूंढ रहा हूं, तू हमारे घर में देवी पैदा हुई है, मैंने तुमको तेरे को बहुत परेशान किया है, मैं तेरे से क्षमा मांगता हूं और आज मैं तेरे पैरों को हाथ लगा कर ही छोड़ूंगा। मैंने कहा मैं पैरों को हाथ ही लगाने दूंगी, तो मतलब उस दिन उन्होंने रियलाइज किया कि मेरी जो भी तेरे प्रतिबंधन थे वो सारे मेरे मैंने खत्म किए, अभी आप रोज क्लास में भी जा सकते हो, मेरी कोई भी रोक टोक नहीं है, तू हमारे घर में देवी पैदा हुई है। तो सब घर वालों को कहा कि कोई भी इसके खाने में प्याज व्याज नहीं डालेगा, ये जैसे खाना बनाएगी जिस तरह का बनाएगी इसको बनाने देना, कोई भी इसके खाने में प्याज नहीं डाले। उन्होंने क्षमा मांगी मेरे से। फिर आए, फिर इसके बीच में जब ऐसे ये चल रहा था तो मैं मातेश्वरी के पास गई। मातेश्वरी को करोल बाग में भाई आनंद जी ने, यानी ब्रिजमोहन के फादर जो थे, उन्होंने दादी और बाबा को निमंत्रण दिया था दिल्ली में आने का। तो उन्होंने ही बाबा और दादी के, दादी और मातेश्वरी के लिए बहुत अच्छा एक मकान लिया था। उन दिनों आप देखो ये 60 की या 58 की बात है, 850 रुपए का वो मकान था किराए का, बहुत बड़ा मकान था। वहां मम्मा बाबा को बुलाया, तो मम्मा को कहा, मैंने जाके कहा, मैंने कहा मम्मा मैं तो ब्रह्मा कुमारी नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मेरे पिताजी और इतना बंधन डालते हैं कि मतलब मेरे को किसी भी चीज में धारणाओं में चलने के लिए वो मना करते हैं। भले मैं तो चुप करके अपना करती हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं बन पाऊंगी। मम्मा ने कहा हाँ ब्रह्मा कुमारी नहीं बन पाऊंगी। मैंने कहा नहीं। तो मम्मा ने बहुत बाकी ऐसे गले में ऐसे कर हाथ करके मेरे को ले लिया और कहा अच्छा आज तुमको मम्मा एक ही बात बताती है। मैंने कहा हाँ जरूर करेंगी। मैंने कहा जरूर करूंगी। तो मम्मा ने कहा जो तुम समझती हो ना मैं शांता हूं, भूल जाओ और आज से तुम ये समझो मैं शिव शक्ति हूं, भूल जाओ शांता, भूल जाओ ये मेरे रिश्तेदार हैं, घर में भी रहो, जाते ना भी बंधन पूरा नहीं करता है घर। ये पहले की बात है, पिताजी ने तो बाद में रियलाइज किया। तो मम्मा ने कहा घर में जाओ, बस मैं शिव शक्ति हूँ, पूरा ड्यूटी भी घर की पूरी करो, उनसे बातचीत भी करो, बाकी ये समझो कि मैं शिव शक्ति हूँ और मौन में रहना तुमको। उन दिनों में भी हमारे बहुत मौन रखवाते थे दादी प्रकाशमणि वगैरह भी, और हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट चलते थे। तो मम्मा ने कहा 3 दिन तुमको भी मौन में रहना। तो मैं भी 3 दिन मौन में रही, मौन में रही, बिल्कुल आई नहीं, भान ही नहीं आया कि मैं शांता हूं। तब मेरा ये बंधन जो मैंने बताया ना, पिताजी ने कहा कि आज से मैं तुम्हारे सारे जो मैंने रोक लगाई हुई है सब हटाता हूं और तुमको रोज भले ही सेंटर पर जाना तो जाओ। तो ये मम्मा के सिर्फ एक ही शब्द से कि मैं शिव शक्ति हूं, इस प्रैक्टिकल इस धारणा से, जैसे कि मेरा बिल्कुल बंधन हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो मैंने अनुभव किया कि जो बाबा हम बच्चों को रोज मुरली में भी देता है, उसकी जितना हम प्रैक्टिकल ले आते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति बढ़ती जाती है। और फिर हमें ये भी नहीं भूलना है कि 63 जन्मों का हमारा जो हिसाब किताब है वो भी हमको चुकतू करना है। आप देखो कई बार ऐसे होता है कि हमारा 5-7 का ग्रुप होता है और उसी में से ही एक आपको इतना अंटरसन, आप बड़ी हैं वहां पर उस ग्रुप में भी, और वो कोई एक आत्मा इतना अंटरसेंट आपको बोल देती है, उस समय याद आता है कि मेरे 63 जन्मों का हिसाब किताब है, उसमें मैंने ही कभी किसी जन्म में इसको ऐसे बोला हुआ है और ये आज चुप्त हो रहा है। जरा भी मन के अंदर उसको देखते हुए भी हम कहां देखें उसी आत्मा के ऊपर, जरा भी मन के अंदर ये नहीं आए कि ये क्या बोल रहा है, ये कोई तरीका है बोलने का, बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल उसी प्रेम की दृष्टि से उसको देखते हुए उसको विदा करें। और फिर जब हम अकेले जाकर के घर बैठते हैं अपने कमरे में, तो समझो चलने भी लगे कि आज ये क्या क्या बोल के गया है, उस समय भी यही दृढ़ संकल्प रहे कि मैंने किसी जन्म में इसको ऐसे बोला हुआ है, नथिंग न्यू। जरा भी उसके प्रति वो व्यर्थ का संकल्प नहीं चले, ये हमारा चुक्त हो गया। तो इस तरह आप देखिए हमारे सारे दिन के अंदर या जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, कितनी बार हमारे सामने ऐसी बातें आती हैं। हम अगर कहीं समझो ड्यूटी पर हैं, अपने सेवा में हैं, वहां की कोई बहने कोई भाई कोई स्टूडेंट भी समझो कुछ ऐसा बोलते हैं, तो हमारा ये जो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है वो हमारा चुप्त हो रहा है। इतनी अगर हमारे अंदर ये ज्ञान की पक्की श्रेष्ठ धारणा है ना, तो कुछ भी हो जाए, आंधी आए चाहे तूफान आए, मैं और मेरा बाबा दूसरा ना कोई, तीसरा ना कोई, ये अभी हमको जो खासकर ज्ञान में अच्छी तरह से चले हुए हैं उनको ये अपनी अवस्था को बहुत बहुत अच्छी तरह से बना करके चलना है, तो आपके बिना बोले भी सेवाएं अपने आप होती रहेंगी। अब जो समय बाकी है इसमें अभी हमें बिल्कुल बहुत सिंसियर होकर के अपनी अवस्था को मजबूत बनाने में लग जाना है। अभी हम किसी को भी इधर उधर नहीं देखें, हम अपने को देखें। अभी अमृत वेले भी अगर उठते हैं हम अपना, तो हम उस समय देखें कि 3:30 से जो 4:45 तक जो बाबा ने टाइम दिया हुआ है, इसमें सचमुच मैं निर्विकल्प होकर के अपनी उस ओरिजिनल स्टेज में स्थिर रही तो कौन से संकल्प मेरे को भी आए व्यर्थ के, उसको देखना कि मेरा हिसाब किताब अभी कहाँ कहाँ लटका और अटका हुआ है, क्योंकि अभी हमें वापस घर जाना है। लेकिन वापस घर जाना है तो पहले से हमें वो घर की जो स्थिति है महसूस होती जानी चाहिए ना, नहीं तो जब अचानक इतना तूफान आ जाएगा और हम सोचे हम ये एकाग्र में नहीं हो सकेंगे, जबकि हमारा बहुत समय से ये हिसाब किताब ये स्टेज का अपना परिपक्वता का प्रैक्टिस नहीं होगी। तो अब हमें अपनी उस तैयारी में भी रहना है जो अभी बाबा कहते हैं बहुत जल्दी विनाश की रिहर्सल और भी अच्छी तरह से होने वाली है, और उस रिहर्सल को देखते हुए हमें अपने आप को चेक करना है कि ये जितना भी समय खासकर अमृत वेले जो हम बैठते हैं शाम को 6:30 से 7:30 बैठते हैं, इस समय बिल्कुल अशरीरी अवस्था हो जाती है हमारी, और वो तभी होगी जब सारा दिन हमने अपने जो हमारा संबंध संपर्क है उसमें हम बिल्कुल अच्छी तरह से ज्ञान युक्त होकर के चले हुए होंगे। अब समय वो है, हो गया ना, किसी ने समझो कर भी दिया हमारा नुकसान, ये भी मेरा पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है। नहीं तो ज्यादातर क्या सोचते ये होते कौन है, ये मैं इस पोस्ट में और वो ये कौन होते, लेकिन नहीं, मैंने भी अपने 63 जन्मों में टेढ़े हिसाब किताब बनाए हुए हैं, उन में से ये मेरा कोई हिसाब किताब सामने आया है, इसको भी मुझे चुकतू करना है। मुझे याद आता है कि शुरू से जैसे ही अपन ज्ञान में आए हैं तो दादी ने दीदी ने और बाबा ने, मुझे याद आया कि एक बार मैं मधुबन गई हुई थी तो मैंने ये या बाजू में कटवर्क वगैरह की वो मेरी टीचर जो है सी के देती थी, क्योंकि वो कहती थी आप वाइट नहीं पहनो, मैंने कहा मैं तो वाइट ही पहनूंगी, तो करके देती थी। तो बाबा ऐसे ही जा रहे थे और बाबा मेरे को कहते बच्ची ये कितने बाल का है ये कटवर्क की जो बाहें बनाई हुई थी ना, बच्ची ये कितने बाल का है, मैंने उन दोनों की बात मैंने कहती ओ, इतना महंगा पहनती हो, ओ, बहुत महंगा पहनती हो बाबा। तो देखो हमें कैसे बाबा सिंपल रहना सिखाता कितने प्यार से, 8-10 दिन के बाद फिर कोई मैंने ऐसा पहनना तो उसको भी नहीं छोड़ा मेरे को, अच्छा बच्ची ये कितने बाल का है, ऐसे मैंने कहा इतने। ओ, दीदी को बुलाया, दीदी शांता देखो कितना महंगा महंगा पहनती है। तो मैंने कहा अभी अभी बिल्कुल नहीं पहनूंगी बिल्कुल नहीं पहनूंगी। तो देखो बाबा ने शुरू से ही लेके हमारी कितनी छोटी छोटी वीकनेसेस जो थी उसको हटाया, छोटी छोटी हर तरह की, चाहे दीदी ने चाहे दादी ने। आप देखो मैंने तो बहुत ज्यादा खर्चीली भी थी, आप देखो पिक्चर हम दिन में 2 बार भी चल ले जाते थे, और बाबा ने ऐसे आराम से छुड़ा दिया, बहुत शौक था मेरे को भी, बहुत आराम से छुड़ा दिया। तो बाबा की कमाली कहेंगे। और बाबा ने जो जयपुर में म्यूजियम बनाया, इतना बाबा ने दिल से, यानी 10-10, 12-12 पेज का पत्र लिख के भेजते थे, 25 में ऐसे करना, 25 में ऐसे करना, आइए लगवाना, ये करना। जब म्यूजियम तैयार हो गया, बहुत लोग जनी सब मुडी में निकला कि भाई ये ऐसे ऐसे पहला म्यूजियम बाबा ने बनवाया है, मैंने भी, हमने एडवर्टाइज बाबा मुडी में निकलवाया। बहुत लोग आते थे, यानी रास्ते में पड़ता था जयपुर, तो बहुत लोग देखने के लिए आते थे। तो एक दिन कहा, बाबा ने कहा, और शिव बाबा ने बाबा को बिल्कुल मना किया हुआ था बाहर जाने के लिए, जैसे डायरेक्शन दी हुई थी। एक दिन दोपहर को बाबा को आया ख्याल, कहा कि ऐसी क्या बात है, यानी मैं भी तो प्रजापिता ब्रह्मा हूं, मैं भी तो कुछ अपनी मर्जी कर सकता हूं। तो बाबा ने क्या किया, अपनी रिजर्वेशन जयपुर की करा ली कि 1 बजे की ट्रेन दोपहर में जाऊंगा और रात को 12 बजे पहुंच जाऊंगा, रात को देख करके और सवेरे 5 बजे की ट्रेन से निकल आऊंगा। तो क्या हुआ, एक दिन का ही तो फर्क हुआ, मैं भी तो प्रजापिता ब्रह्मा हूं, मैं नहीं कुछ कर सकता हूं। तो ये बाबा ने रिजर्वेशन भी करा ली, खाना भी बनवा लिया साथ ले जाने का। उसी समय बाबा ने खींची रस्सी संतरी दादी की और दादी को कहा कि किससे पूछ करके इन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया है। बाबा ने बिल्कुल कैंसिल कर दिया, बिल्कुल कैंसिल कर दिया, किससे पूछ के बनाया प्रोग्राम। तो जो संतरी दादी ने आके कहा, हुक्म ही हुक्म, उसका मानना ही है। बाबा ने ऐसे एक बार तो ऐसे किया था, हाँ जैसे बाबा के, फिर एकदम उसमें नेचुरल उसमें आ गए। तो बाबा का हम देखते थे कि पग पग पर, पल पल पर बाबा की श्रीमत अनुसार भी चलना है, बीच में थोड़ा वो बाबा कहता ना कि मैं बच्चा भी हूँ, सब कुछ हूँ, सब कुछ हूँ। तो एक बार बन गए बच्चे कि क्यों मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं जा, मैं भी तो प्रजापिता ब्रह्मा हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ क्या। तो बाबा ने सब कुछ अपना तैयारी कर ली, बाबा ने एंड टाइम पर बाबा का वो कैंसिल कर दिया। फिर बाबा का देखा कैसे हुक्म से पूरा बाबा की कहने में भी चलते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं मैंने तो बना लिया अभी प्रोग्राम आ गई रिजर्वेशन कर, नहीं, जैसे बाबा कहे, जहां बैठना है, जहां जाना है, जो खाना है, उसी अनुसार मुझे चलना है। तो बाबा का देख करके हम प्रैक्टिकल सीखते थे कि देखो बाबा ने कैसे अपने आप को इतनी ऊंची स्टेज पर ले आए। बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलते भी थे हमारे साथ बाबा, लेकिन बाबा का हम देखते थे कैसे भी किस भी स्थिति में बाबा, हम बच्चों के संपर्क में भी आते थे लेकिन बाबा स्थिर होकर के। कई बार हमारा कमरा बाबा के साथ वाले कम, जहां मुन्नी आजकल अपना वो करती है, वो कमरा में मिलता था, तो हम पर्दा उठा के रात को कई बार देखते थे आखिर बाबा करता क्या सारी रात, दिन रात बाबा का हम देखते हैं। जब भी मैंने तो 2-3 बार देखती थी, कई बार जब देखती थी टांग के ऊपर टांग चढ़ा करके और एकदम अपने उस नशे में रहते। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में हम बच्चों को कैसे निरंतर याद में रहना है वो करके दिखाया, इसलिए हमें तो जरा भी ज्ञान मुश्किल नहीं लगा, जरा भी नहीं लगा मुश्किल। और ऐसे खेलते भी थे बाबा हमारे साथ, सब खेलते, खाना भी खाते थे, और कई बार बच्चा खाना खा रहे होते थे और हम लोग ऐसे निकलते थे बुला करके, गिट्टी भी खिलाते थे। मतलब हर तरह से बाबा का, हर तरह से प्यार बाबा का हम बच्चों ने पाया, इसलिए कभी भी ज्ञान मुश्किल लगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे कि नेचुरल हमारी जीवन ही है। आज तो फिर भी है, सारा वातावरण देखते हैं तो थोड़ा दूसरा रूप आता है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल जैसे नया जन्म हो गया हमारा और जैसे कि यही हमारे माता पिता सब कुछ यही है। इतनी खुशी रहती थी जो बात नहीं पूछो, और इतना कड़ा बंधन घर में होते हुए भी, कितना कड़ा बंधन था। मैं कहती हूँ वो तो देखने योग्य होता था जब हमारे पिताजी आए आंखें निकाल के और फिर साफ साफ ऐसे करते, हम कहते थे जरा भी असर उनका हमारे ऊपर नहीं उठा होता था, और उनको प्यार से उनके साथ चलते थे, तो देखते थे कि मैं तो कैसे बोलता हूँ उनके साथ और ये लोग मेरे साथ कैसे करती हैं, बोलती हैं। तो प्रैक्टिकल मैंने देखा, कितना भी कड़ा बंधन हो, अगर हमारी खुद की जीवन ज्ञान के कायदे कानून अनुसार चलती है तो हमारे बंधन कटने कोई मुश्किल नहीं होते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव जरूर किया है। और मैं आप सभी से भी यही कहूंगी कि बंधन को काटना, कितना भी कड़े से कड़ा बंधन हो, काटना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ बाबा की श्री मत अनुसार हम चलें और हमारा संबंध सिर्फ एक बाप दूसरा मैं, तीसरा ना कोई। अगर इतनी बुद्धि हमने अपनी हल्की बना ली हुई है तो कोई भी कितना भी विघ्न आ जाए सामने, कोई मुश्किल नहीं है। मेरा तो अनुभव ये है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये सचमुच ये परिवार, कैसा भी परिवार आता है सामने, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये अपने बाप का ही तो परिवार है। कमी पेशी तो सभी के अंदर होगी, लेकिन बड़ी दीदी का एक ही होता था स्लोगन कि अवगुण देखना है तो अपना देखो, और गुण देखना है तो दूसरों का देखो। ये दीदी कहती थी, पक्का कर लो, ये जैसे गुरु से मंत्र मिलता है ना, तो ये मंत्र पक्का कर लो कि अवगुण देखना है तो अपना देखना है, और गुण देखना है तो औरों का देखना है। तो उससे हमारा स्नेह भी बना रहेगा, जब हम उसके गुण ही देखेंगे है? तो उससे स्नेह भी हमारा बना रहेगा। और ये इतनी प्रैक्टिकल जीवन में सुख देने वाली बात धारणा है, जो बात नहीं पूछो। और ऐसे लगता है कि कोई भी हमारा पराया नहीं है, सब हमारे बाबा के परिवार के हैं, और उनके साथ अपना स्नेह बना रहता है। ऐसी जीवन जब होती है, बड़े मजेदार जीवन है। वो जो भक्ति मार्ग में कहते थे ना, वो कीमती जीवन, वो ये है। प्रैक्टिकल में हमारी ये जीवन है, कितनी जीवन हमारी श्रेष्ठ बन जाती है। हमारे नेत्र, हमारा मुख, हमारे कान, हमारी कर्म इंद्रियां भी सारी सतोगुण बन जाती है, अगर हम बाप की श्री मत पर चलते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। मम्मा की तो एक विशेषता और थी कि मम्मा के पास चाहे 3 महीने रहो, चाहे कितना भी समय रहो, लेकिन मम्मा की एक भी आपको कमी दिखाई नहीं देती थी। ये मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता थी। 3-3 महीने भी हम रह के आते थे, कभी तो 5-5 महीने भी रहते थे, मम्मा के संपर्क में भी आते थे, मिलने भी जाते थे, लेकिन मम्मा का जरा भी चेहरा बदल जाए, मतलब इतना समय, अभी कब 56 में हम लोग आए हैं ना, तब से जब से हम मधुबन जाते थे, कोई भी मम्मा इतना सारा दिन यानी घूमती फिरती सेवाएं करती थी, वो यहाँ तक कि सब्जी तक भी काटने में बैठती थी, लेकिन मम्मा से के चेहरे से, मम्मा की एक्टिविटी से कोई भी कमी आपको नहीं दिखाई देती थी। कोई अगर टेढ़ा बांधता भी, कोई बोल के भी जाता था ना, मम्मा ऐसे बोले ऐसे, ना सवाल ही नहीं। इतनी उस समय उसके सुनते हुए भी इतनी उसको बल दे देती थी कि वो अपने आप चुप हो जाता।